ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत् सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी मृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्वीर्यैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमुसुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले सोऽयम् रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध सातवां अध्याय श्लोक नंबर 10 का पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयम् निष्किल्विषः साक्षात् महाभागवतः महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्त अनुचरः बलि। श्री नारद उवाच अयम् निष्किल्विषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनंतानुचरो बलि। श्री नारद उवाच अयम निष्किल्बितः साक्षात् महाभागवतो महान्, त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बलि। अयम् निष्किल्बितः साक्षात् महाभागवतो महान्, त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बलि। अयम् निष्किल्बितः साक्षात् महाभागवतो महान्, त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बलि। माताजी श्री नारद उवाच। महान संत नारद मुनि ने कहा अयम यह गर्भस्थ बालक निष्किल विषह पूर्णतया पाप रहित साक्षात प्रत्यक्ष महाभागवत संत भक्त महान महान त्वया तुम्हारे द्वारा न प्राप्स्यते नहीं प्राप्त करेगा संस्थाम अपनी मृत्यु अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुचर दास बलि अत्यंत शक्तिशाली। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, नारद मुनि ने उत्तर दिया इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष तथा निष्पाप है, निसंदेह वह महान भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शक्तिशाली दास है, अतएव तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। तात्पर्य, ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब असुरों या अभक्तों ने भक्त को मारने का प्रयास किया है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त को कभी मार नहीं पाए। भगवान भगवद गीता 9:31 में वचन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की घोषणा है कि उनका भक्त असुरों द्वारा नहीं मारा जा सकता। प्रहलाद महाराज इस वचन की सत्यता के ज्वलंत उदाहरण है। नारद मुनि ने स्वर्ग के राजा से कहा, भले ही तुम देवता क्यों न हो, तुम्हारे लिए और अन्यों के लिए भी इस बालक को मार पाना असंभव होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग सप्तम स्कंध का पाठ कर रहे हैं। जो नियमित श्रोता हैं, एक एक घटना को समझ रहे हैं। जो नए श्रोता हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा। इसमें प्रहलाद महाराज के उपदेश को सुन करके उनके साथियों का प्रश्न हो गया। प्रहलाद महाराज अपने विद्यालय में अपने साथियों को उपदेश देने लगे। जब टीचर लोग, गुरु लोग किसी काम में थे, लीजर पीरियड था, उपा हुई, बच्चे सब खेल रहे थे, प्रहलाद महाराज उनको बुलाए और उनको कुछ कहने लगे। प्रहलाद महाराज जब उनको बुलाए तो गौरवेण, प्रहलाद महाराज के प्रति उनका बहुत सम्मान का भाव था, तुरंत आ गए और उनकी बात को सुनने लगे। बहुत ध्यान से सुन रहे थे और बात उनको बहुत अच्छी भी लग रही थी। तन्यस्त हृदय क्षणा, बच्चों का, बालकों का, असुर बालकों का वर्णन किया गया है कि तन्यस्त हृदय क्षणा, वे अपने इक्षण को, आंख को और हृदय को भी प्रहलाद महाराज में रख दिए। मतलब उनकी तरफ देख करके वे बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसके पीछे कारण था कि उनको बहुत आनंद अनुभव हो रहा था। अपने हृदय को भी रख दिए थे प्रहलाद ने, वे आनंद अनुभव कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जब उनको शिक्षा दिए, बहुत उनको अच्छा लगा, तो उनके मन में कौतुक हो गया कि यह ज्ञान आप कहां से सीखे हैं। ज्ञान वो कभी देख, मैं ये नारद जी से सीखा हूं, लेकिन उनके मन में कौतुक था कि नारद जी से कैसे भेंट हो गई, हम लोग तो साथ में पढ़ रहे हैं, कभी यहां नारद जी आए नहीं, और ऐसा नहीं है कि आपका उम्र बहुत अधिक हो, कभी पहले उनसे भेंट किए, समवयस्क हैं, और हम लोग छोटे कक्षा से ही, लोअर केजी से ही साथ में हैं, और कभी नारद जी यहां आए नहीं, तो कैसे आपको यह ज्ञान हो गया, इस रहस्य को खोलिए जिससे हम लोगों को विश्वास हो सके। तो इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज बोलने लगे, और आप इसको सुन चुके हैं, फिर भी संक्षेप में मैं बोल रहा हूं कि पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम। नारद जी नहीं, प्रहलाद महाराज उनको बतलाने लगे कि हमारे पिता जब तपस्या के लिए मंदराचल पर चले गए, युद्धोदमम परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति, तो देवता लोग दानवों के प्रति युद्ध का उपक्रम प्रारंभ कर दिए। पहले की यह स्थिति थी कि देवता लोग अपना स्थान छोड़ चुके थे। जब हिरण्यकश्यपु का हिरण्याक्ष का वध कर दिए भगवान, हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध हुआ, बहुत दुख हुआ और वह त्रिशूल ऊपर करके कहने लगा। त्रिशूल को ऊपर किया था क्योंकि उसकी भावना यह थी कि विष्णु और नलायक ऊपर रहता है, तो ऐसे ऊपर त्रिशूल करके और वो कह रहा था कि कितना भारी पतन हो गया। वो परमात्मा है, सबके हृदय में समान भाव से रहता है, लेकिन उपधाव नहीं, देवता लोग उसकी पूजा कर दिए, उसकी उपासना कर दी, उसको कुछ भेंट दे दिए तो उनका पक्ष ले लिया, हमारे भाई का हत्या कर दिया पक्ष ले करके। अरे वह बालक जैसा अस्थिर बुद्धि वाला हो गया, पहले सम था, उसके स्वभाव में बहुत भारी परिवर्तन हो गया। जैसे बच्चे को मिठाई दे दिया जाता है तो बच्चे उसी व्यक्ति के पीछे चलने लगते हैं, वो परमात्मा जो सम था देवताओं के उपाधावन से, उनके पूजा से उनके पीछे हो गया और इतना नीच धरातल पर आ गया कि हमारे भाई की हत्या कर दिया और उसका पतन हो गया। इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं, ये देखिए वह सुअर का रूप धारण किया, इस दृष्टि से भी वो कितना नीचे गिर गया, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं इसी त्रिशूल से उसका गर्दन काटूंगा और अपने भाई का तर्पण करूंगा, खून से तर्पण करूंगा। रुद्र प्रियम, हमारे भाई को खून बहुत प्रिय है तो खून से तर्पण करूंगा, तो ऐसे बोल रहा था। इसके बाद अपने भाई के पत्नी को, पुत्रों को, अपने माता को सांत्वना दिया और उसके मन में विचार आया कि पहले हमको अजर बनना है, अमर बनना है, इसके लिए तपस्या में लग गया। वो जब तपस्या में लग गया तो देवता लोग बहुत उसके भय से, देवता लोग पहले ही भयभीत थे, जब वो तपस्या में लग गया तो इतना उत्पात होने लगा कि सब लोग बहुत भयभीत हो गए और वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। देवता लोग, देखिए कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो लोक बहुत भारी संकट में है। वो देवता लोग जा करके कहने लगे कि आपको क्या बतलाना है, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि बहुत भारी अनर्थ होने जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी को पद दिए और वे तपस्या करके, बहुत परिश्रम करके कुछ नियम बनाए हैं, वेद का मर्यादा स्थापित किए हैं, लेकिन उसकी इच्छा ये अन्यथा कर तुम, हिरण्यकश्यपु की यही इच्छा है कि आपके विधान को बदल दे, आपका शासन नहीं चलेगा, वो आपके शासन को बदलना चाहता है। हिरण्यकश्यपु की यह इच्छा थी कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, जो लोग तपस्या करते हैं, दुख भोगते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको स्वर्ग दे दिया जाता है, यह ठीक नहीं है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो अभी तपस्या करेगा तो आगे भी उसको दुख ही देंगे, अभी दुख भोग रहे तो आगे भी दुख भोगना होगा, और जो लोग अभी भोग में लगे हुए हैं उनको आगे भी भोग देंगे। तो ऐसे वे कह रहे थे, आश्वासन दिए, हम उसका वध होगा, जो भी अपने पुत्र से वे द्वेष करेगा उसका वध होगा। देवता लोग एक तरह से मान लिए कि हिरण्यकश्यप मार ही दिया गया। और देवता लोग अपने स्थान को लेने के लिए उद्यम प्रारंभ किए। सब जगह यह बात फैल गई कि उसके हड्डी चाम तो सब चीटी खा गए, वो तो मर ही गया है, वो तो अपने पाप से ही भक्षण कर दिया गया। तो तेसा मति बलोद्योगम निशम्या सुरयुद्ध पा बध्यमाना सुरेर भीता दुद्रभु सुरयुद्ध पा। और देवता लोग यह सोच करके कि अब तो हिरण्यकश्यप आने वाला नहीं है, उसके तो हार चाम सब नष्ट हो गए, अब कैसे आएगा, तो वे लोग दानवों के प्रति युद्ध प्रारंभ कर दिए। स्वर्ग पर कब्जा किए थे तो खाली कराने का उपक्रम चालू कर दिए। और वे देवता लोग दानवों का खूब पिटाई करने लगे, सबको मारने लगे। दानव लोग देखे कि देवता लोग आक्रमण कर दिए, पिटाई करने लगे, तो प्राण परिप्सव, बस उनकी यही एक इच्छा थी कि किसी तरह हमारा जान बच जाए। तो सबको छोड़ करके अपने पत्नी को, पुत्र को, बंधु को सब भाग गए। अब देवता लोगों का मनोबल बढ़ा और ये पूर्ण विजय के लिए वे जो राजा का स्थान था, हिरण्यकश्यप का भवन था, उस पर भी कब्जा करना चाहते थे। वहां गए, वहां हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उसको बंदी बना लिए। क्योंकि देवता हैं, स्त्री को बंदी बनाना है स्पेशल बात है, तो इंद्र खुद ही उसको पकड़ करके ले जा रहे थे। वह स्त्री बहुत दुखी थी और बहुत विलाप कर रही थी, कुररी मीवा, जैसे कुररी पक्षी रोती है वैसे वह रो रही थी। नियमाना भयोद्विग्ना रुदतिम कुररी मीवा, कयाधो पतिव्रता नारी थी, उसको बहुत भय था कि हमको ये कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे। बहुत उद्विग्न थी, बहुत भयभीत थी, बहुत रो रही थी। तो यदृक्षया गतस्तत्र देवर्षे ददृशे पति, इन संजोग की बात है, नारद जी वहीं आ गए और रास्ते में देखे कि इंद्र पकड़ करके स्त्री को ले जा रहा है। तो प्राह मैनम सुरपते नेतु मरहस्य नागसम, नारद जी कहने लगे हे सुरपते, हे देवराज, अरे यह स्त्री ले जाने लायक नहीं है। मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिग्रहम, अरे ये सती है, पतिव्रता नारी है, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा इसका विवाह किया, दूसरा प्राणी ग्रहण किया है, इसको आप क्यों ले जा रहे हैं। तो ऐसे जब नारद जी इंद्र को कहे तो इंद्र कहने लगे आस्ते श्याम आस्ते श्या जठरे बीरजम अविषयम सूरत दिश। इंद्र कहने लगे गुरुदेव, हमको इस स्त्री से कोई काम नहीं है, लेकिन इसके गर्भ में सूरत दिश, जो देवताओं से द्वेष करने वाला हिरण्यकश्यप है, उसका वीरजम अविषयम आस्ते, इसके पेट में उसका अविषय बहुत तेज वीर्य है, उसके वीर्य से गर्भ है, तो इससे हमको बहुत भय है। देवताओं के दुख देने वाले का पुत्र गर्भ में है, इससे मैं बहुत भयभीत हूँ। तो आश्यताम जावत प्रसवम, मैं केवल इस स्त्री को तभी तक रखना चाहता हूँ जब तक यह प्रसव नहीं कर देती है, प्रसव करने के बाद इस स्त्री को छोड़ दूंगा। अर्थस्य पदवीं गतः, जे ही हमारा काम बन जाएगा, कहने का आशय यह है कि जे ही यह प्रसव करेगी तो बच्चे को मैं मार दूंगा, जो देवताओं का विरोधी का पुत्र है उसका वध कर दूंगा, और इसके बाद स्त्री को छोड़ दूंगा, हमें इस स्त्री से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार जब इंद्र कहे तो अब नारद जी कह रहे हैं अयम निष्किल विषह साक्षात महाभागवतो महान, कि तुम यह समझ रहे हो कि यह देवताओं को दुख देने वाला है, का पुत्र है, तो यह भी दोषी होगा, यह भी पापी होगा, ऐसी बात नहीं है। अयम निष्किल विषह, ये जो गर्भ में स्थित बालक है इसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये सर्वथा निर्दोष है और केवल पाप से ही नहीं मुक्त है, ये महान है, साक्षात महान, ये बहुत महान व्यक्ति है। शब्द दे रहे साक्षात महान, ऐसी बात नहीं है कि अपने पिता के संबंध से यह महान है। कभी कभी कोई साधारण व्यक्ति होता है, कोई पद मिल जाता है, या उसके परिवार का विरासत ऐसा है, या धन के प्रभाव से उसको लोग महान मान लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। एकदम साधारण व्यक्ति है लेकिन किसी विद्वान का पुत्र है तो उसका लोग सम्मान करने लगते हैं, उसको महान मान लेते हैं। कभी कभी अब पिता के संबंध से महानता आ जाती है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि साक्षात महान ये अपने गुण से महान है, किसी दूसरे के संबंध से नहीं। यह प्रसिद्ध बात है, प्रहलाद जी अपने गुणों के चलते महान है। आप प्रारंभ के अध्यायों में पढ़े होंगे हिरण्यकश्यपु के चार पुत्रों का उल्लेख किया गया है, तो प्रहलादो तेसा महान गुणै महदुपासक, प्रहलाद जी का वर्णन आया है कि अपने चारों भाइयों में अपने गुणों के चलते ये महान है, और उनके गुणों का उल्लेख किया गया है महद उपासक। प्रथम गुण है, दिखाया गया है कि ये महत् पुरुष के उपासक हैं, ब्रह्मण्य सत्यसंध, ये ब्राह्मणों के भक्त हैं, सत्यवादी हैं, बहुत सारे गुणों का उल्लेख किया गया है। उनके गुणों के उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि अरे अब गुण के विषय में कितना कहा जाए, यही समझ लीजिए कि इतने महान हैं कि शत्रु लोग भी इनको प्रतिमान बनाते हैं। किसी की तुलना करनी होती है, किसी के गुण का जजमेंट करना होता है तो इनको स्टैंडर्ड के रूप में, मानक के रूप में रखते हैं। बहुत सारे गुणों का उल्लेख किया गया है, हमें तो सब याद इस समय नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ श्लोक है। नोदुग्न चित्त व्यसने सुनिष्प्रिय, प्रहलाद महाराज के विषय में कहा गया है कि नोदुग्न चित्त विषयेषु निष्प्रिय व्यसनेषु, नोदुग्न चित्त व्यसनेषु, किसी प्रकार का कोई दुख आवे, संकट आवे, उनका चित्त उद्विग्न होने वाला नहीं है। नोदुग्न चित्त व्यसनेषु निष्प्रिय, और श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुद्रिक, जो श्रुत विषय है, जो स्वर्ग का विषय है, भोग है, उसमें भी वे निष्प्रिय है, उसकी स्प्रिया नहीं है। और जो दृष्ट भोग है, जिसका सब लोग भोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसमें भी अवस्तुद्रिक, उसको भी वास्तविक नहीं मानते हैं। उनके गुणों की गिनती करते हुए कह रहे हैं कि अरे कितना गुण गिना जाए, नैसर्ग की रति है भगवती, नैसर्ग की रति। अब उनका यह गुण है कि वे जन्म से ही जात रति भक्त हैं। बहुत लोग जो कठिन साधना करके भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, तो प्रहलाद में यह जन्म से ही है। आप भक्ति के विषय में जानते हैं, भक्ति का तीन स्तर है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और जब कठिन साधन करते हैं, साधन में अभिनिवेश होता है, यत्न करते हैं, आग्रह करते हैं, और कोई कोई विरले व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त करता है। भाव भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। और वह भक्ति प्रहलाद जी को नैसर्ग की रति जन्म से ही प्राप्त था। प्रहलाद के गुणों के विषय में उल्लेख है कि पादारविंदयो निसेवया, स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निसेवया किंचन संगलब्धया, भगवान के चरण कमल जो अकिंचन भक्तों के संग से प्राप्त होता है, उससे चरण कमल के निसेवा से, उसके सेवन से, उसके आस्वादन से तन्वन पराम निर्वृत्ति, तन्वन आत्मन वे अपना आनंद का विस्तार कर रहे हैं। और जो लोग मोह बार बार दुसंग में पढ़ करके जिनका मन अशांत है, तो अन्य मन समम व्यधात, उनके मन को भी शांति प्रदान किए। और प्रहलाद महाराज में असंख्य गुण है, अनंत गुण है। और नारद जी कह रहे हैं कि साक्षात महान, अपने गुणों से यह महान है, महाभागवत। इसका कारण है कि बहुत बड़ा भक्त है। त्वया न प्राप्यते संस्थान अनंतानुचरो बलि, तुम इसको मार नहीं सकते हो, यद्यपि यह गर्भस्थ शिशु है, लेकिन यह अनंतानुचरो, यह भगवान अनंत का अनुचर है, भक्त है, इसलिए यह बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। तो त्वया न प्राप्यते संस्थान, तुम लाख कोशिश करोगे यह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तुम मार नहीं सकते हो, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। तो इस प्रकार जब नारद जी समझाए इंद्र को, तो इंद्र बहुत तर्क वितर्क नहीं किए, वे नारद जी के बात को स्वीकार किए और कयाधु को छोड़ दिए। ये कथा आप आगे पढ़ेंगे। ये नारद जी के उक्ति पर थोड़ा विचार कीजिए। वे कह रहे हैं कि त्वया न प्राप्त से संस्था, तुम इसका वध नहीं कर सकते हो। और नारद जी ऐसे कोई सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई केवल भावना की बात नहीं है, यह तथ्य है। श्रीमद् भागवतम में भगवान अपने मुख से स्वीकार किए हैं कि हमारे भक्त को कोई पराजित नहीं कर सकता है। आप श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंध में राजसूय यज्ञ का प्रसंग पढ़ते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज की इच्छा हुई कि हम भगवान की आराधना, भगवान की पूजा बहुत भारी उत्सव आयोजित करके करूंगा, जो यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, क्रतुराजेन राजसूय यज्ञ से मैं आपकी आराधना करूंगा। ऐसे वे भगवान से प्रस्ताव रखे। पीछे की और घटना है, जब भगवान हस्तिनापुर पहुंचे तो उनका सत्कार किया गया और सब लोग बैठे थे सभा में ही। युधिष्ठिर महाराज प्रस्ताव रखे कि मैं आपका यजन क्रतुराज से, राजसूय यज्ञ से करना चाहता हूं। इसलिए यज्ञ करना चाहता हूं कि जिन लोगों के मन में भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, भक्ति के विषय में संशय करते हैं, वे लोग भी भक्ति की महिमा को समझ जाए। तो प्रचार के लिए जिनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है, उनकी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए मैं राजसूय यज्ञ से आपकी आराधना करना चाहता हूं। ऐसा युधिष्ठिर महाराज प्रस्ताव रखे। मानो भगवान कह सकते हैं कि तुम इतना भारी मनोरथ कर रहे हो, राजसूय यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट करते हैं, तो बहुत भारी मनोरथ है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, तत्पाद के अविरतम परिजे चरंती ध्यायंत भद्र नसने सुचयो गृणंती बिंदंती ते कमल नाभ भवाप वर्गम आशा सते यदित आशीष ईश नान्य। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि तत्पाद के अविरतम परिजे चरंती, जो आपके चरण जुगल का निरंतर आराधना करते हैं, आपके नामों का गान करते हैं, तो निश्चित है बिंदंति ते कमलनाभ भवाप वर्गम, आपके चरणों के सेवा करने का, आपके जस का गान करने का स्वाभाविक फल है कि वे माया बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आशा सते यदि आशीष ईश नान्य, लेकिन यदि उनके मन में कोई कामना है, कुछ भोग चाहते हैं, तो वह भोग उन्हीं को प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। मुक्ति तो भगवान के भक्ति से मिलती ही है। यदि किसी को भोग की स्पृहा है, कुछ भोग चाहता है, कोई ऊंचा मनोरथ है, तो वह भी पूर्ण भगवान के भक्ति से ही होता है। वह भी भगवान के भक्तों को ही प्राप्त होगा, दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का मनोरथ पूर्ण होता है, हमारा भी मनोरथ पूर्ण होगा, मैं आपके चरणों का आश्रय लिया हूं। ऐसे कई एक बात बोले, भगवान भी उनके बात का समर्थन किए कि तुम जो यह आराधना करना चाहते हो, यज्ञ करना चाहते हो, तो सबका अभिप्सित है, भाई बंधु सब लोग यही चाहते हैं, तो अब इसमें बहुत देर करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो निर्विजित नृपतिम सर्वान कृत्वा त जगतिम बसे, सभी राजाओं को जीत जाओ, सारे संसार को बस में कर लो, और संभृत्य सर्व संभारण आह रस्व महाक्रतुम, और यज्ञ के लिए जो भी धन इत्यादि आवश्यक है तो उसको इकट्ठा करके प्रारंभ कर दो, महायज्ञ को, राजसीय यज्ञ को, इसमें क्या कठिनाई है। ऐसे भगवान कह रहे हैं, और मानो युधिष्ठिर महाराज कहे कि लेकिन जितना तो पड़ेगा, बड़े बड़े राजा हैं, तो दिग्विजय करना पड़ेगा, सबको पराजित करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं एते ते भ्रातरो राजन लोक लोकपालांश संभव है, अरे ये जो तुम्हारे भाई हैं ये लोकपाल के अंश से उत्पन्न हुए हैं, ये इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं, पवन देवता के अंश से उत्पन्न हुए हैं, और तुम लोगों की यह स्थिति है कि तुम लोग अपने मन पर बस किए हो, उसके चलते तुम लोगों के द्वारा मैं जीत लिया गया हूं, जितोस्मि आत्म बताते हम अहम जित अस्मि, तुम लोग मन पर इतना नियंत्रण है, मन इतने बस में है कि खुद मैं जीत लिया गया हूँ। दुर्जयो यो कृतात्म भी, जिनका मन अपने बस में नहीं है, जो पुण्यात्मा नहीं है, उनके द्वारा मैं सर्वथा अजित हूँ, वे कभी नहीं जीत सकते, लेकिन जब तुम लोग मुझ पर ही विजय कर लिए हो तो फिर संसार के राजाओं को जीत लेना क्या कठिन है, तुम लोग तो बड़े बड़े लोकपालों के अंश से संभव हो, ये कोई कठिन काम नहीं है। भगवान आगे सिद्धांत दे रहे हैं कि तुम्हारी बात तो दूर है, जो सामान्य भक्त हैं, अकिंचन भक्त हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन लोगों को भी कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम पराजय का भय मत करो। और भगवान कह रहे न कश्चन मत परम लोके तेज सा यशसा श्रिया विभूति भिर्वा भवे देवो पिकम पार्थिव। भगवान कह रहे न कश्चन मत परम लोके, इस संसार में यदि कोई मेरा भक्त है, मेरा आश्रय लिया हुआ है, तो उस व्यक्ति को किसी भी दृष्टि से कोई भी पराभूत नहीं कर सकता, उसको पराजित नहीं कर सकता, नहीं कि तेज सा यशसा श्रिया, चाहे प्रभाव से देखा जाए, जश के दृष्टि से देखा जाए, धन के दृष्टि से देखा जाए, और या विभूति भी जो सुविधा के दृष्टि से, संसाधन के दृष्टि से देखा जाए, अभिभवे देवोपि किम पार्थिव, कोई देवता भी उसको अभिभूत नहीं कर सकता। यह सिद्धांत सामान्य भक्तों के लिए भगवान दे रहे हैं। युधिष्ठिर इत्यादि को तो कह रहे हैं कि आप लोग तो बड़े बड़े लोकपालों के अंश से उत्पन्न हुए हैं, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई अकिंचन भक्त है, सामान्य भक्त है, उसको भी कोई देवता भी पराभूत नहीं कर सकता, देवता भी उसको छोटा नहीं दिखा सकता। कि वो पार्थिव, फिर ये पार्थिव पृथ्वी के किसी व्यक्ति के विषय में क्या कहना है, वो कैसे किसी को, किसी भक्त को हरा सकता है। वो भक्त सदैव अजेय हैं, उनको किसी भी दृष्टि से, धन के दृष्टि से, जस के दृष्टि से, ये प्रभाव के दृष्टि से, साधन के दृष्टि से देवता भी नीचा नहीं दिखा सकते। फिर पृथ्वी के लोगों के विषय में तो सोचना ही क्या है। और नारद जी इंद्र को समझा रहे हैं कि यद्यपि यह गर्भ में है, शिशु है, लेकिन तुम इसका वध नहीं कर सकते हो। क्योंकि यह महान है, भगवान अनंत का अनुचर है, भगवान का भक्त है, यह भक्ति की महिमा है। भक्ति बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत गरीयसी है, महान है, और जो व्यक्ति भक्ति को धारण करता है तो स्वाभाविक ही उसमें महानता आ जाती है। यद्यपि भक्त लोग चाह नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति का यह स्वाभाविक गुण है कि कई एक चीज उसके अधीन हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत किए हैं, वे कहते हैं कि हरि भक्ति महादिव्या मुक्त्यादि सिद्धयः, कि भगवान की जो भक्ति है वह देवी के समान है, महादिव्या महारानी है, और मुक्ति आदि जो सिद्धियां हैं, तो कह रहे हैं मुक्त्यादि सिद्धयः, वह सिद्धि जिसमें मुक्ति प्रधान है, या भुक्तयश्चाद्भुतः तस्या चेतिकावद अनुव्रता, चाहे मुक्ति की बात हो और भुक्तयश्चाद्भुतः, चाहे भोग की बात हो, अद्भुता भोगा अद्भुता भुक्ति, और अद्भुत प्रकार के भोग भी दास चेतिकावद अनुव्रता, जहां भक्ति है तो बड़े बड़े भोग के भोग भी दासी के समान उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। जैसे कोई रानी है तो जिधर जाती है उसकी दासी उधर ही दौड़ जाती है, उसको भय भी होता है, उधर नहीं गई तो एक्शन ले सकती है, उसको डिसमिस कर सकती है, रानी का अधिकार है। तो जैसे रानी जिधर चलती है तो उसकी दासियां अनुव्रता भयभीत होकर के उधर ही भागती हैं, तो उसी प्रकार भक्ति महादेवी के समान है। हरि भक्ति महादेव्या और भुक्तयश्चाद्भुता तस्या चेतिकावद अनुव्रता, और जो बड़े बड़े भोग हैं ऐश्वर्य हैं वे भी दासी के समान उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। और नारद जी समझा रहे हैं इंद्र को कि तुम वध नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान का भक्त है, शक्तिशाली है, महाभागवत है, कि वध नहीं कर सकते हो। अरे वध करने की बात तो दूर है, जो व्यक्ति किसी भक्त पर आक्रमण करता है तो उसी का अहित होता है, ऐसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तेज सुप साधु सुप प्रहित तेज कुरते शिवम प्रहर्तु कुरते शिवम। यदि साधु पुरुष पर, भगवान के भक्त पर कोई अत्याचार करता है, कुछ अपना प्रभाव दिखाता है, तेज छोड़ता है, तो वही प्रभाव वही अत्याचार प्रहर्तु कुरते शिवम, वो जो प्रहार करने वाला है उसी का अमंगल हो जाता है और उसका सब चीज नष्ट हो जाता है। जब कंस भगवान का वध करना चाहता था, कृष्ण का वध करना चाहता था, तो अपने मंत्रियों को बुलाया कि क्या करना चाहिए। उसके जो मंत्री थे असुर थे, देवताओं से स्वाभाविक उनका द्वेष था, तो उसको कंस को वो सलाह दिए कि विष्णु का जो शक्ति है देवताओं से बढ़ती है, इसलिए पहले देवताओं को नष्ट किया जाए और देवता का जो भोजन है यज्ञ है उसको समाप्त किया जाए। तो देवताओं को कष्ट देने लगे, कंस तैयार हो गया, ठीक है देवताओं को कष्ट दो, तो चक्रु कदनम कदन प्रिया, स्वाभाविक देवताओं के प्रति अमर्ष है, द्वेष है, तो दैत्य लोग देवताओं पर अत्याचार करने लगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आराध आगत मृत्युवः, वे भगवान के भक्तों पर अत्याचार प्रारंभ किए, तो यही समझिए कि जो मृत्यु दूर थी वह नजदीक आ गई। और सिद्धांत दे रहे हैं कि आयुश्रियम बोलो ये उसकी आयु यश बल वे सब कुछ नष्ट हो जाता है। पुंसह महद अतिक्रम, कोई भगवान के भक्तों का अतिक्रमण करता है, उन पर अत्याचार करता है, अपराध करता है, तो लोकन आशीष उसका कोई लोक है, आशीष है, धर्म है, आयु है, धन है, वो सब समाप्त हो जाता है। तो कोई प्रहार करने चलेगा तो विजय की बात तो दूर है, उसी का सब शक्ति समाप्त हो जाएगा। एक आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि कैसे होता है, श्रीमद् भागवतम में इसका उत्तर दिया गया है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, वे कैसे रक्षा करते हैं, तय तय भाव ही परिरक्ष मार, तय तय भाव, जिस स्थान में जो सामग्री है, जो चीज है, उसी से भगवान रक्षा कर लेते हैं। भगवान ने कि ऐसी शक्ति है, ऐसी व्यवस्था है कि जैसे पालन की व्यवस्था किए हैं, सृष्टि में कहीं भी किसी व्यक्ति का भी पालन करा सकते हैं, जंगल में, पानी में, आकाश में, कहीं पालन करा सकते हैं। वैसे ही रक्षा के विषय में लिखा गया है, तैस्त ही भाव ही परिरक्ष मार, जो सामग्री है, जो संसाधन है, उसी से भगवान रक्षा कर लेते हैं। और इसको स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जब जट भरत जी की हत्या की बात थी, देवी के सामने बलि करने के देने के लिए ले गए थे, लेकिन जिस बलि को संतुष्ट करना चाहते थे वही बलि ही, वही देवी ही उनको मार करके खत्म कर दी। तो भगवान तष्ट भाव परिरक्ष मार, जो स्थिति है, जो संसाधन है, जिस देश में भक्त है, वही के संसाधन से रक्षा कर लेते हैं। इसी बात को नारद जी समझा रहे हैं कि भगवान का भक्त है गर्भ में, इसलिए तुम इसको मार नहीं सकते हो, तुम्हारे द्वारा यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। नारद जी के बात को इंद्र स्वीकार कर लिए और तुरंत कायोध्य को छोड़ दिए। तो आगे की घटना को आप आगे के कक्षा में सुनेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न है कोई? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की